नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। इससे आपदा से निपटने की तैयारियों, प्रतिक्रिया और उबरने में तेजी आएगी। संसद ने बॉयलर्स विधेयक 2024 को और लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 को मंजूरी दी। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस के 14 विधायकों में से 12 को कथित दुर्व्यवहार के कारण 7 दिन के लिए निलंबित किया गया। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में 23 फलस्तीनी मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकाय विश्व एथलेटिक्स ने लिंग निर्धारण करने के लिए खिलाड़ियों के गालों के स्वाब की अनिवार्य जांच शुरू करने को मंजूरी दी। और शिलोंग में AFC एशियाई कप 2047 के क्वालिफायर में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा में यह विधेयक पिछले साल दिसंबर में ही पारित हो चुका है। विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण STMA के कामकाज को कुशल बनाना है। विधेयक में NDMA और STMA को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदाओं के आकार और पैमाने में बदलाव हुआ है और प्रतिक्रियाओं को भी उसी अनुसार बदलना होगा।
हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह से AI आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं।
संसद ने बॉयलर्स बिल 2024 पारित कर दिया है, जिसे आज लोकसभा ने मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने पिछले वर्ष दिसंबर में ही इस बिल को पारित कर दिया था। यह बिल बॉयलर्स एक्ट 1923 को निरस्त करता है। यह कानून देश में बॉयलर के नियमन, भाप बॉयलर से विस्फोट के खतरे से लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। यह देश में बॉयलर के निर्माण और उपयोग के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एक रूपता भी लाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने विधेयक में सुरक्षा पहलुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर अत्यधिक ध्यान दिया है। लोकसभा ने आज वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक में 35 सरकारी संशोधन किए गए हैं। इनका उद्देश्य टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में करदाताओं को सम्मान देने और कारोबारी सुगमता के लिए करों में राहत दी गई है।
We have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country.
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नए आयकर विधेयक पर अगले मॉनसून सत्र में चर्चा होने की संभावना है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेताओं के साथ आज दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर बैठक की। इसमें सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता तिरुचि शिवा, जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, बीजू जनता दल के नेता सस्मित पात्रा सहित कई नेता उपस्थित थे। इससे पहले आज सदन में सभापति ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि यह संसद की संप्रभुता, सर्वोच्चता और प्रासंगिकता से जुड़ा है। उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को प्रभावी ढंग से खत्म किया है। गृह मंत्री ने कहा कि हुर्रियत के दो गुटों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अन्य गुटों से भी अलगाववाद का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने का आग्रह किया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अल्पसंख्यकों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यकों के सम्मेलन में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।
हम चाहते हैं कि हर समुदाय के लिए मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, हमारा जितना भी जो 6 नोटिफाइड कम्युनिटीज है, तो ये 6 नोटिफाइड कम्युनिटीज का अलग अलग तरीके से हम टीम भी चला रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए क्या करना है, सिख समुदाय के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, फिर बौद्ध के लिए, जैन के लिए, पारसी के लिए, सबके लिए हमने सोचा हुआ है कि किस तरीके से हमको इंटरवेंशन करना है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 60% से अधिक लोग 18 से 45 वर्ष के होते हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 3% का नुकसान हो रहा है। श्री गडकरी ने बताया कि गुड समेरिचिंस योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को ₹25,000 का इनाम दिया जाता है। ओडिशा विधानसभा में आज कांग्रेस के 14 विधायकों में से 12 को कथित दुर्व्यवहार और विधानसभा के नियमों के उल्लंघन के मामले में 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्य सचेतक सरोज प्रधान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के सदन में पारित होने के बाद ये निर्णय लिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस वर्ष बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 32% की वृद्धि हुई है। इसमें कुल 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में 17% की वृद्धि हुई है।
जो एजुकेशन सेक्टर रहा उसमें 24-25 में जो खर्च किया गया 16,396 करोड़ खर्च हुआ, जिसे हम अपने बजट में 19,291 करोड़ पे लेके गए हैं और इसमें हमने 17% का इजाफा एजुकेशन सेक्टर में किया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग रोड एंड ब्रिजेस 73% मोर देन लास्ट ईयर।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राज्य सरकार के प्रमुख योजना महिला समृद्धि योजना को भी 5,100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। इनमें से एक माओवादी की पहचान सुधीर उर्फ सुधाकर के रूप में की गई है। इस पर 25,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। 2 अन्य माओवादियों पर 2,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इलाके में संयुक्त अभियान चलाया।
दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके जो कि अपुजमाड़ का इलाका है, वहां पर 10 से 12 माओवादी की उपस्थिति की आसूचना, सटीक आसूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में DRG दंतेवाड़ा ऑपरेशन में गई। ये लोग 25 मार्च को सुबह मुठभेड़ हुआ है, रुक रुक कर थोड़ी देर तक मुठभेड़ चला। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग अभियान जारी हुआ। सर्चिंग अभियान में कुल 3 माओवादी का शव बरामद हुआ है, साथ ही में ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद हुए हैं और भी सामग्री बरामद हुई है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गाजा पट्टी में आज हुए इजरायली हमले में 23 फलस्तीनी मारे गए। फलस्तीनी अधिकारियों के अनुसार गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान फिर शुरू होने के बाद से लगभग 700 लोग मारे गए हैं। इजरायल के ताजा हमलों के कारण 2 महीने का संघर्ष विराम टूट गया है। इजरायली सेना ने सभी उत्तरी सीमावर्ती शहरों के हजारों निवासियों को पूरा क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक आज चीन के पेइचिंग में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ये सम्मेलन पहली से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। श्री अक्षय कुमार ने कहा कि ये सम्मेलन दुनिया भर के रचनाकारों को एक व्यापक मंच प्रदान करेगा।
Entertainment capabilities have the power to shake the world. And a milestone step in this direction is about to be taken. So guys, taiyar ho jaiye World Audio Visual Entertainment Summit ke liye, Waves 2025, the world's most powerful gathering of minds that will change the future of global entertainment right here in our country, Bharat.
अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकाय विश्व एथलेटिक्स ने लिंग निर्धारण करने के लिए खिलाड़ियों के गालों के स्वाब की अनिवार्य जांच शुरू करने को मंजूरी दी। इसे किसी भी आवश्यक फॉलोअप के साथ गाल के स्वाब के माध्यम से या सूखे रक्त स्पॉट विश्लेषण के माध्यम से लिया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष सेबेस्टियन को ने कहा कि खेल में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शिलांग में एएफसी एशिया कप फुटबॉल 2027 ग्रुप सी के क्वालिफायर के तीसरे दौर के महत्वपूर्ण मुकाबले में इस समय भारत का सामना बांग्लादेश से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के छठे दिन आज पावरलिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस की स्पर्धाएं हुई। एक रिपोर्ट।
पावरलिफ्टिंग में रेशमा मोगल ने एलिट 73 किलो में स्वर्ण पदक जीता, जबकि आशाबेन पटेल ने रजत और माया ने कांस्य पदक जीता। एलिट 88 किलो में सुधीर ने स्वर्ण, राहुल जोगराजिया ने रजत और जगमोहन ने कांस्य पदक जीता। एलिट 97 किलो में सुमित कुमार ने स्वर्ण, हेमंत कुमार ने रजत और जावेद ने कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी में आकाश ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में स्वर्ण पदक जीता। संजीव कुमार ने रजत और रुद्रांश ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पैरा टेबल टेनिस कोर्ट में खिलाड़ियों ने क्वालिफाइंग मैचों में दमदार प्रदर्शन किया। पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पर बना हुआ है, उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन अक्टूबर तक एम्स दिल्ली में परीक्षण के लिए स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। इससे आपदा से निपटने की तैयारियों, प्रतिक्रिया और उभरने में तेजी आएगी। संसद ने बायलर्स विधेयक 2024 को और लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 को मंजूरी दी। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस के 14 विधायकों में से 12 को कथित अनुचित व्यवहार के कारण 7 दिन के लिए निलंबित किया गया। गाजा पट्टी में इसराइली हमले में 23 फलस्तीनी मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकाय विश्व एथलेटिक्स ने लिंग निर्धारण करने के लिए खिलाड़ियों के गालों के स्वाब की अनिवार्य जांच शुरू कर दी है। और शिलांग में एएफसी एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।